ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार्दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे मूरुलोकदल्लि यार्कीर्तिव्याप्तवागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯುಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ ಕಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನಾ ಭಾವನಾ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ आज की 15वीं भावना मार्ग प्रभावना भावना है, इसको मार्ग प्रभावना भी बोल सकते हैं और धर्म प्रभावना भी बोल सकते हैं। इस भावना के नाम दो हैं, दो होकर के भी एक ही अर्थ वाले दो नाम हैं। मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना है। कैसे करें, मार्ग की प्रभावना करना है। मार्ग क्या है? रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का मार्ग ही मार्ग है। उसकी प्रभावना हम कैसे करें? अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने आचरण से, अपनी शक्ति से मार्ग की प्रभावना करें। शक्ति मन वचन काय की भी होती है। मन वचन काय की प्रवृत्ति से भी धर्म की प्रभावना हो सकती है। काया को धर्म के विकास में लगाएं, वचनों को धर्म के विकास में लगाएं, मनोबल को धर्म के विकास में लगाएं। ये मन वचन काय की जो शक्ति है, यह क्षायोपशमिक शक्ति है, इसलिए इसको शक्ति के अनुसार ही प्रयोग करने के लिए बताया है। जिसको जितना साध्य है उसको उतना धर्म प्रभावना करनी चाहिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए। वस्तुतः धर्म क्या है, मार्ग क्या है, मंजिल क्या है, अब इस विषय को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंजिल का ज्ञान हर रोज हो रहा है और मार्ग के प्रति आकर्षित हम प्रतिनित्य हो रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति को नाप रहे हैं कि हम अपनी शक्तियों को कितना प्रयोग करके उस पर जा सकते, इसका चिंतन मनन चल रहा है। यह बहुत अच्छा है कि कोल्हापुर में कम से कम चिंतन प्रारंभ हो गया। मार्ग किसे कहते हैं? आचार्यों ने बताया है मृग्यते अन्विष्यते येन यत्र वा स मार्गः। मृग्यते खोजा जाए, जिसको खोजा जाता है, जिसके द्वारा खोजा जाता है, जहां खोजा जाता है उसको मार्ग कहते हैं। जिसको खोजा जाता है, किसको खोजा जाता है? रत्नों को खोजा जाता है। कहां खोजा जाता है? मार्ग में खोजा जाता है। मार्ग कहां है? आत्मा में ही मार्ग है। मंजिल कहां है? आत्मा में ही मंजिल है। इन रत्नों को कहां खोजा जाए? आत्मा में ही खोजा जाना चाहिए। मृग्यते अन्विष्यते येन यत्र वा इति मार्गः। जहां पर, जिसके द्वारा, जिसको खोजा जाता है उसको मार्ग कहते हैं। ये मार्ग की परिभाषा है। मार्ग इस शब्द को सुनते ही हमारे मन में ये विचार आता है कि बहुत बड़ा हाईवे रास्ता जो कोल्हापुर टू पुणे जा रहा है, ये ख्याल में बहुत जल्दी आता है। किंतु धर्म के क्षेत्र में जब भी मार्ग ऐसा शब्द आ जाए तो बाहर का रास्ता दिखना बंद होना चाहिए और भीतर दर्शन, ज्ञान और चारित्र का रास्ता दिखना चाहिए। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का रास्ता ही मार्ग है। इस मार्ग से हमें प्रभावित होना है। देखो, मार्ग प्रभावना किसको कहते हैं? रत्नत्रय का उपदेश दूसरे को देना मार्ग प्रभावना है। ऐसा नहीं, रत्नत्रय के स्वरूप को समझकर उससे आकर्षित स्वयं को पहले होना। क्या कहा? रत्नत्रय का स्वरूप समझकर उन रत्नों से, वही है मार्ग, रत्नों का मार्ग, रत्न का मार्ग, यह डांबर का मार्ग नहीं या सीमेंट का मार्ग नहीं। इसमें रत्न ही रत्न बिछाए हुए हैं। रत्नों का मार्ग, इस पर चलना, चलने वाला भी रत्न का व्यापारी ही होता। रत्न का व्यापारी रत्न का व्यापार करते 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 रत्नों को इतना कमाया कि उनको मार्ग पर बिछा दिया, रास्ता बना दिया। उन रत्नों के मार्ग से हम चलते, ये चलने के लिए है। तो चलते समय हम अपने में प्रभावित हों, ये आवश्यक है। मार्ग से आकर्षित होना ये मार्ग प्रभावना है। रत्नकरणक श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशः शात प्रभावना। धर्म प्रभावना की परिभाषा उन्होंने दे दी। धर्म प्रभावना क्या है? अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार को देखो, ये कहां कहां तक फैला हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार तीन लोक में सब जगह फैला हुआ, ये अंधकार कहाँ नहीं, निगोद में नहीं है क्या? निगोदी जीवों में जरा भी प्रकाश नहीं है, द्विइंद्री जीवों में जरा भी प्रकाश नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। तृष्णाड़ी भी अंधकार से है भरा हुआ, और तृष्णाड़ी के बाहर का प्रदेश भी अंधकार से भरा हुआ है। यहां पर प्रकाशित आत्माएं बहुत कम हैं। आज विदेह क्षेत्र में संपूर्ण प्रकाश को धारण करने वाले 20 तीर्थंकर केवली हैं, और वो दुनिया को सदा प्रकाशित करते रहते हैं। कम से कम 20 लोग तो सतत प्रकाशित रहते हैं, ये दीपक कभी बुझ नहीं सकते, 20 दीपक बुझ नहीं सकते, जगमग 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 जग प्रकाश 2.5 दीप के अंदर। इससे ज्यादा प्रकाश और कहीं भी नहीं और किसी का भी नहीं। केवल ज्ञान से बढ़कर के प्रकाश क्या हो सकता है? हो सकता है? उनके लिए हम उपमा देते हैं, करोड़ों सूर्य और चंद्र मिलकर के भी आपके केवल ज्ञान के प्रकाश को परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों ही नहीं असंख्यात सूरज मिलकर के केवल एक मध्य लोक भी लोक को भी पूर्णतः प्रकाशित हमेशा नहीं रख पा रहे हैं। किंतु आपका केवल ज्ञान तो 3 लोक को 1 सेकंड को भी न छोड़ते हुए सतत सदा 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 काल के लिए प्रकाशित रखने वाला वह सूरज है, और वह एक ही, एक सूरज में ही ये शक्ति है कि वह 3 लोक को निरंतर प्रकाशित रख सकता है। स्वयं तो प्रकाशित रहता ही है, दीप स्वयं प्रकाशित भी होता है और लोकालोक को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। और इस दीपक के नीचे एक विशेष बात है, इस दीपक के नीचे अंधेरा नहीं रहता। आप आरती जला के रखें, दीपक जला के रखें, तो उसके नीचे अंधेरा दिखाई देता है। ट्यूबलाइट को भी जला लो तो वो पीछे जरा अंधेरा रहता ही है, किंतु ये केवल ज्ञान का प्रकाश ऐसा प्रकाश है, इस प्रकाश के माध्यम से कहीं भी अंधेरा शेष नहीं रहता। यह समस्त अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को प्रकाशित करता है और त्रैकालिक द्रव्य गुण पर्याय को उसके परिणति को प्रकाशित करता रहता है। ये बाहर को प्रदान करने वाला प्रकाश है। केवली से आप पूछते हैं, हे भगवान, मेरे असंख्यात भव के बाद कौन सा भव रहेगा? तो उस पर भी प्रकाश डालने की क्षमता केवल ज्ञान के पास होती है। और ज्यादा पूछो, अनंत काल के बाद भगवान मैं कहां रहूंगा, क्या मेरी परिस्थिति रहेगी? तो केवल ज्ञान उसको भी प्रकाशित करता है। एक जीव नहीं, दो जीव नहीं, अनंतानंत जीव हैं इस संसार में, उनकी भावी परिणति को जानता है। वो कब मोक्ष जाएंगे, नहीं जाएंगे, कहां रहेंगे, किस भव में, किधर वो घूमते फिरते रहेंगे, भटकते रहेंगे, ये भी, और मोक्ष पर्याय को भी, और प्रति क्षण के परिणति को भी, प्रति समय के परिणति को भी केवल ज्ञान जानता रहता है। इतना बड़ा ज्ञान स्वयं को भी प्रकाशित रखता है और दूसरे को भी प्रकाश प्रदान करता है। ऐसा जो ज्ञान है उसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। इस केवल ज्ञान को पाने के लिए केवल ज्ञानी की महिमा को व्यक्त करके संसारी प्राणियों के सामने रखकर उस केवल ज्ञानी की ओर आकर्षित कराना, ये धर्म की प्रभावना है। जो अंधेरे में बैठे हैं और स्वयं अंधेरे रूप हो गए, खुद ही अंधेरा बन गए हैं। हम प्रकाश हैं कि अंधेरा है? नहीं, हम प्रकाश नहीं हैं। हम तो प्रकाश यदि हैं भी तो वो प्रकाश हैं, जैसे उद्बत्ती जला देते हैं ना, उद्बत्ती जलाकर बुझा देते हैं और लगा देते हैं, जरा मच्छर वगैरह दूर हो जाए घर में, लगा देते हैं। उस उद्बत्ती के प्रकाश को कौन सा प्रकाश, कितना प्रकाश कहेंगे, कुछ भी नहीं, उतना ही प्रकाश हम लोगों के पास। इतना प्रकाश तो कभी बुझने वाला नहीं है, इतना टिमटिमाता रहे। ये उद्बत्ती न बुझ सकती है, न नाश हो सकती है, न इसका विनाश हो सकता है, यही तो शक्ति है। एक चिंगारी में भी पहाड़ के समान घास को भी जलाने की शक्ति होती क्या नहीं होती? हमारे पास भी पहाड़ के पहाड़ हैं। क्या है वो? कर्म है। उन कर्मों को जलाने की शक्ति इस चिंगारी में, लेकिन आज तक हमने कर्म रूपी पहाड़ को जलाया नहीं, उनको सुरक्षित रखते हुए आए। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पहाड़ हमारे हैं, हमारे कब्जे में हैं, ये हमारे हैं, यही हम हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना ये पहाड़ नहीं रह सकते। ठीक है, आपके बिना पहाड़ नहीं रहते, पहाड़ के बिना आप नहीं रहते, लेकिन पहाड़ वस्तुतः आपके हैं या आप ही स्वयं पहाड़ हैं? ये चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम पहाड़ हैं, हम ऐसे पहाड़ हैं सुमेरु पर्वत से भी बड़े हैं, इस पहाड़ को कोई चढ़ नहीं सकेगा। केवल ज्ञान के पहाड़ को कोई चढ़ सकता है? छद्मस्त जीव, छद्मस्त जीव को केवल ज्ञान के पर्वत को चढ़ना संभव नहीं। और वह जो चिंगारी है, वह चिंगारी अपनी महिमा को प्रकट कर ले कि मैं भी स्वयं पहाड़ हूं, लेकिन अभी तो अणु के रूप में हूं, मैं अणु पर्वत बन सकता हूं, इतनी महिमा मेरे पास है, लेकिन जिस पहाड़ को मैं अपना पहाड़ समझ रहा हूं, उस पहाड़ के कारण से ही मेरी आत्मा में अंधेरा छा गया है। हमारी आत्मा में अंधेरा क्यों है? हम पर को अपना समझते हैं। धर्म की प्रभावना का तात्पर्य क्या है? अपनी आत्मा को राग से प्रभावित नहीं रखना, अपनी आत्मा को राग से प्रभावित नहीं रखना, हमेशा वीतरागता में बनाए रखना, ये धर्म की प्रभावना है। निष्कषाय आत्मा की अवस्था ही धर्म है। उस धर्म के प्रति हमें आकर्षित रहना चाहिए, सतत आकर्षित रहना ही मार्ग प्रभावना है। मार्ग सराग है क्या वीतराग है? वीतराग है। उससे प्रभावित कौन हो, दूसरे हो क्या पहले हम हो? स्वयं पहले उससे हमें प्रभावित होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि ये पहले हो जाए तो मैं उनके पीछे पीछे चलकर मैं भी बन जाऊंगा। क्या मतलब है दूसरे से ऐसा क्यों सोचते हैं? धर्म की बात आती है तो दूसरा कोई साथ चाहिए पड़ता, और धर्म कहता है दूसरे के विचार में अगर पड़े हो तो तुम्हारे साथ मैं नहीं चल सकता, ये धर्म कहता है। धर्म करने वाला एक ही एकांगी अकेला होकर के ही चल पड़ता है, निकल पड़ता है, और वह उसकी अनुभूति करने लगता है। जब वह चल पड़ता है तो उसको देख देख कर प्रभावित होते हैं अन्य लोग। दुनिया में सभी जब राजी हैं, धर्मात्मा नहीं है, एक भी उसमें कोई धर्मात्मा नहीं दिख रहा है, तब क्या सोचोगे? कोई एक पहले निकलेगा तो मैं निकलूंगा, ऐसा सोचोगे? या कम से कम मैं तो एक निकल जाऊं तो दूसरा कोई हमको देख करके आ भी सकता है, ऐसा सोचे? कैसा सोचे? दुनिया में कोई भी धर्मात्मा न हो और अंधेरा हो तो उस अंधेरे में एक व्यक्ति मोमबत्ती जलाए, उसके प्रकाश में कई लोग आकर के बैठेंगे, ये क्या एकाएकी प्रकाश उनको अलग लगेगा, ये कहां से प्रकाश आ रहा है, अभी तक तो अनादिकाल से नहीं देखा, ये कौन सा दीपक जल रहा है, कैसे क्या चमत्कार है, देखने आएंगे कि नहीं? जब दुनिया में दीपक नहीं होते, पहली बार दीपक कोई आ जाए तो उसको देखने आते तो हैं, और देखने के लिए जो आते हैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं आते, प्रभावित होकर के ही आते और दीपक के सामने बैठकर घंटों तक देखते हैं ऐसा कैसा जल रहा है, अभी तक नहीं था, यहाँ अंधेरा अंधेरा था, ये प्रकाश कहाँ से आया? दीपक भी कितना अच्छा है, उसमें कुछ भरा हुआ सा भी लग रहा है, तेल या कुछ है, सब नीचे से लेकर ऊपर तक दीपक का चिंतन शुरू होता है, लेकिन एक को तो दीपक बनना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा कि नहीं? कम से कम एक को तो दीपक बनना ही पड़ेगा, और यहां जो बैठे हैं इतने ही दीपक जल जाएं तो कोल्हापुर प्रकाशित हो जाएगा, पूरा पूरा कोल्हापुर प्रकाशित हो जाएगा। कम है क्या यहां दीपक? एक एक मोहल्ले में एक एक दीपक जाए तो मोहल्ले मोहल्ले प्रकाशित हो जाएंगे। ये हमारी धर्म प्रभावना करने की तरीका है, धर्म दूसरे में आ जाए इसकी प्रतीक्षा नहीं करना, हमारे में आ जाए पहले, इस प्रतीक्षा में रहना चाहिए, और धर्म से प्रभावित हमें पहला होना चाहिए। स्वतंत्र विचार से स्वतंत्र सोचो। हमारे घर में पति कुछ करने ही नहीं देते, हम क्या करें, ऐसा कहकर चुपचाप नहीं बैठना, धर्म को स्वीकार करके चलना, वो अंधेरा आज न कल प्रकाश में बदलेगा। पति है तो कहीं पत्नी ठीक नहीं, पत्नी ठीक है तो कहीं पति ठीक नहीं, कहीं बच्चे ठीक हैं तो माता पिता ठीक नहीं, जहां माता पिता ठीक हैं तो बच्चे ठीक नहीं, ऐसा कोई न कोई हर घर में समस्या है, हर घर में अंधेरा है, और एक एक घर में पांच पांच लोग हैं तो पांच अंधेरे हैं, पांच अंधेरे, अलग अलग स्वतंत्र अंधेरे हैं, वो भी अपने अपने आत्मा में, और एक उसमें से अपने दीपक को जला लेता है तो बाकी चार जो हैं अंधेरे प्रकाशित हो जाते, क्योंकि अंधेरे में वो जो बैठे हैं ना उनकी आंखें चमकने लगती, उनकी नींद टूटती। नींद से जगते ही आप यदि ट्यूबलाइट जलाया तो एकाएक ट्यूबलाइट को आप देख नहीं पाते, आंखें चमक जाती। ऐसा ऐसा करके ट्यूबलाइट जैसा लगता है ना, लगते समय भी वो भी ऐसा ही करता है। तो जो ट्यूबलाइट लग गया, ट्यूबलाइट का असर अपने पर आता है, हम भी यूं लाइट का असर अपने ऊपर आता है। और लाइट को जलने के बाद वो कितना शांत लगता है, ट्यूबलाइट शांत लगता है और अन्य लाइट आंखें जलन करती। ट्यूबलाइट में ऐसी क्या व्यवस्था है जो आंखें जलन नहीं करती? उसमें अवश्य कोई लेप है अंदर, उस लेप के कारण से भीतर की किरणें बाहर नहीं आती और वह लेप देखने वालों को शांति प्रदान करता है। प्रकाश अंदर है लेकिन उस प्रकाश से शांति जो मिलती है वो लेप काम करता है। कोई सफेद सफेद अवश्य लेप होता है, फूटने के बाद आप हाथ लगा करके देख सकते, निकलता भी है, वो पाउडर जैसा रहता। उस पाउडर के कारण से ही किरणें बाहर नहीं निकल पाती और शांति मिलती है अपने आंखों को। ठीक इसी तरह से हमारे आत्मा में यदि वीतरागता का बल्ब जल जाए तो शांति मिलती है, हमको भी शांति मिलती है और पर जो देखते हैं, एक वीतरागी को देखते हैं तो वो भी देखते हुए ही बैठ जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? वीतराग दर्शन ज्ञान और चारित्र का प्रभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का यह प्रभाव है। ऐसा प्रभाव मिलना चाहिए दूसरों को। आप अवश्य इस पर्व के बाद अपने अपने घरों में जाएं, रहे, लेकिन कैसे रहे? अपने आप में रहे, अपने धर्म को स्वयं धारण कर अपने आप में मस्त रहे। किसी को ये नहीं बताना कि हम धर्म कर रहे हैं तुम भी स्वीकार करो, या ऐसा भी विचार नहीं करना कि ये हमको धर्म करने नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं, हमको तो ऐसा ही चलना पड़ता है। ऐसा नहीं, स्वतंत्र होकर के उसको स्वीकार करके पालन करना प्रारंभ कर दो, अवश्य आपको शांति मिलेगी, स्वयं आपको शांति मिलेगी प्रथम, और बाद में दूसरे को भी शांति मिलेगी। धर्म प्रभावना क्या है समझ में तो आ गया, अब क्या ज्यादा बताएं। 10 दिन तक धर्म की महिमा को ही सुना है। समंत भद्राचार्य ने कहा है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश शात प्रभावना। अज्ञान के अंधेरे को हटाने का प्रयत्न अपनी शक्ति के अनुसार करना और इसको करते हुए जिन शासन की महिमा को प्रकट करना। जिन शासन क्या है? वो कोई व्यक्तिगत शासन नहीं, किसी व्यक्ति का धरोहर नहीं, यह प्रत्येक आत्मा आत्मा का शासन। जिन शासन मतलब जीतने का शासन, संविधान, रूल्स, अपने को हम कैसे जीत सकते हैं, इसके जो रूल्स हैं वो जिन शासन। हम अपने क्रोध पर, अपने मान पर, अपने माया पर, अपने कषायों पर, लोभ पर, ममता पर, मोह पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके जो संविधान लिखे हुए हैं, ये संविधान की सारी नियमावलियां, ये रूल्स हैं, ये रूल्स इन संविधानों का प्रभाव दूसरे पर करना, कैसे करना, इनको ले जाकर के पहुंचाने का काम नहीं, इनको अपने में उतारने का काम पहला। लोग अंधेरे में हैं, उनको प्रकाश प्रदान करो, इसका अर्थ ये नहीं कि दीपक ले लिया, बाती लगा दिया, तेल डाल दिया, एक माचिस बॉक्स भी ले लिया हाथ में और उसको देने के लिए चले गए। ऐसा करेंगे नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ यहां पर क्या रखा है शास्त्रों में, यहां पर दीप है, तेल है, बाती है और जलाने का माचिस भी रखा हुआ, ये जो रखा हुआ है इसको दूसरे को देने के लिए रखा हुआ नहीं है। क्यों रखा है यहां, हाँ जो इससे प्रभावित होगा इसको अवश्य जलाएगा, जो यहां शास्त्रों में रखा हुआ है इससे जो प्रभावित होगा वो अवश्य इसको जलाएगा। कहां जलाएगा, अपनी आत्मा के भीतर जलाएगा, इसका सदुपयोग करेगा, अपने आत्मा के भीतर जलाएगा और अपने आत्मा के भीतर जलाकर जहां जहां वो घूमेगा वो रत्न कहलाएगा और रत्न का प्रकाश सब जगह फैलता ही रहता है। रत्न को क्या कहना पड़ता है, ये यहां पर अंधेरा है इसको प्रकाशित करो, नहीं, पदार्थ स्वयं प्रकाशित होते हैं, हम जहां जहां पहुंचते हैं पदार्थ ही स्वयं प्रकाशित होते हैं, पदार्थों को प्रकाशित करने का उपक्रम हमें करना नहीं पड़ता, जहां जाएंगे वहां प्रकाश मिलेगा ही। क्या कहना पड़ता है, हाथ में दीपक लेकर चल पड़े, हे दीवालों प्रकाशित हो जाओ, हे लोगों प्रकाशित हो जाओ, ऐसा कहना पड़ता है, नहीं, पदार्थ ही स्वयं प्रकाशित होते हैं और स्वयं प्रकाशित होते हैं इसलिए धर्म दूसरों को नहीं, ये स्वयं को है, स्वयं में जगाने के लिए, स्वयं को जगाने के लिए। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश शात प्रभावना, जिन शासन की जासन के महात्म्य को हम अपने में धारण करें, हम अपने में धारण करें और हम सबके बीच में जाएं, काय के लिए जाएं, किस उद्देश्य से जाएं, यही पता नहीं, किस उद्देश्य से जाएं हम, हमारे दीपक से और दीपक जले इसलिए जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं, नहीं, हमारे दीपक से दूसरा दीपक जले इस उद्देश्य न जाएं, हमारे दीपक से दूसरे दीपक अवश्य जल सकते हैं, जलना हो तो जले, नहीं जलना हो तो नहीं जले, इसलिए जाएं, स्वाभाविक जाएं, पता है। बराबर वो कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सूत्र भी चाहते हैं, भावना भी प्रबल है, लेकिन विचारों में क्या है, या तो बहुत आगे का सोचते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं सोचते। हमने बहुत सूत्र बताए, बीच में दो सूत्र हैं, अंतिम सूत्र तो रत्नत्रय स्वरूप मार्ग है, वो तो राजमार्ग है। राजमार्ग से पहले एक गाड़ी रोड है और एक पगडंडी है। ये जिन शासन महात्म्य महात्म प्रकाश यथायथम, जिन शासन के यथार्थ महात्म्य को यथाशक्ति हम धारण करें तो क्या बने, ऊपर का मत सोचो, ध्येय में रखो ऊपर को। ऊपर का विषय ध्येय में रहे, पहुंचना तो मंजिल पर ही, लेकिन शक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को मार्ग से प्रभावित करना। किस किस से प्रभावित करना? सम्यक दर्शन से प्रभावित हो जाओ। स्टार्ट हो गया मार्ग प्रभावना, यहीं से प्रारंभ हो गया। सम्यक दर्शन से प्रभावित हो जाओ, प्रभावित होकर के उसको अपनाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दो। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, प्रतिमाधारी बनना आत्मा के लिए बहुत श्रेयस्कर है। आत्मा अगर प्रतिमाओं को धारण करती है तो प्रकाश दुगुणित होता है, दुगुना होता है प्रकाश अपने भीतर, तो ये भी संभव है। इसकी शक्ति हो तो इसको भी करो। सम्यक दर्शन की शक्ति को तो रखना ही चाहिए, इसमें यथाशक्ति नहीं चलेगी। हम सम्यक दर्शन को यथाशक्ति पालन करेंगे, चलेगा नहीं। भोजन करना है, रोटी अपने अपने भूख प्यास के अनुसार खाओ, पानी पियो, ये बात अलग है। थाली भी हम यथाशक्ति ही रखेंगे, थाली को यथाशक्ति ग्रहण करेंगे। थाली तो पूरी तरह से ग्रहण करना पड़ेगा, जिसमें भोजन करना है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र आता नहीं है, वो दोनों पानी और रोटी के समान है, किंतु सम्यक दर्शन थाली के समान है। थाली आए बिना तो भोजन कर ही नहीं सकेंगे। आप रोटी यथाशक्ति खाओ, जितनी भूख है उतनी, और पानी भी यथाशक्ति पियो। ये ज्ञान है, ज्ञान एकाएक सब नहीं आएगा, यथाशक्ति। लेकिन थाली यथाशक्ति लोगे, थाली तो थाली एक साइज की रहेगी भोजन करने के लिए, वहां पर भोजन कर रहे हैं कि नहीं पंडाल में जाकर के, तो साली सबके थाली सबके समान है क्या? नहीं समान है क्या? छोटे बड़े हैं? नहीं नहीं, हमको इतने बड़ी थाली नहीं चाहिए, छोटा यथाशक्ति इतनी शक्ति है, थाली तो छोटी चाहिए, भोजन बहुत चाहिए। चलेगा? थाली जितनी है उतनी ही होती है, किसी के पास भी न छोटी होती है न बड़ी होती है। हाँ, ये बात अलग है, किसी की थाली में कुछ मलिनता है कुछ निर्मलता है। उपशम सम्यक तो निर्मल है, क्षायुपशम सम्यक तो मलिन है, क्षायिक सम्यक तो अत्यंत निर्मल है। तो थाली की विशेषता है, लेकिन थाली बड़ी क्वांटिटी की अपेक्षा उतनी ही है, क्वालिटी की अपेक्षा से अलग अलग है। एक थाली की जो साइज है भोजन करने की, सबकी एक सी है। सम्यक दर्शन छोटा बड़ा नहीं होता, सम्यक दर्शन थाली है उसको तो जैसा जितना है उतना ही स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को जो 25 दोषों से रहित पालन करने के लिए बताया है, उसको पालन करेंगे क्या नहीं? 25 दोष पढ़ लिया, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य देख लिया, नहीं देखा तो? हाँ, कितने लोगों ने 25 दोषों को पढ़ा? 25 दोष अध्ययन करके देखा, कितने लोगों ने देखा? देखो, अभी पढ़ा ही नहीं है तो धर्म से क्या प्रभावित होंगे, और धर्म की प्रभावना होगी क्या? रत्नगण श्रावकाचार या सम्यक ज्ञान संस्कार यहाँ पर मिलता है अलमारी में, यहाँ पर स्टॉल पर, बुक स्टॉल पर, शास्त्र स्टॉल पर, उसमें देखना सम्यक ज्ञान संस्कार पुस्तक में छठा अध्याय, उसमें लिखा हुआ है। 25 दोषों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो और सम्यक दर्शन तो कम से कम स्वीकार कर लो, तो ये धर्म की प्रभावना होगी। इतना करेंगे? कितने लोग करेंगे? सभी करेंगे, करने की भावना सबको है ना। सम्यक दर्शन को समझना है, सम्यक दर्शन हमारे जीवन का प्रथम धर्म है, वह प्रथम मार्ग है। इस मार्ग को स्वीकार करेंगे कि नहीं? तो ये मार्ग अगर स्वीकृत हो गया तो पगडंडी हमारे पास आ गई। अभी तक तो जंगल में भटक रहे थे, इधर जाने को भी रास्ता नहीं था, इधर जाने को भी रास्ता नहीं था। जिस किसी प्रकार से कंकरों को, कांटों को, झाड़ी को हटाते हटाते, अपने हाथों से हटाते हटाते दूर तक पहुंच गए, तो एक पगडंडी मिल गई। और इस पगडंडी पर पहुंच गए हैं, यहां से यह पगडंडी राजमार्ग पर जाती है, और राजमार्ग पर जाने से पूर्व, पहुंचने से पूर्व यह बैलगाड़ी के रास्ते पर लगती है पगडंडी। दो सूत्र हैं राजमार्ग पर तक जाने के लिए, एक सम्यक दर्शन, 25 दोषों से रहित पालन हो, और फिर शक्ति के अनुसार 11 प्रतिमाओं में से कितनी प्रतिमाओं को हम धारण कर सकते हैं, इसको भी चिंतन करना। प्रतिमाओं का स्वरूप समझाया नहीं गया अभी तक। यदि आप गाड़ी मार्ग से चलना चाहते हैं, बैलगाड़ी मार्ग से, तो उसका भी स्वरूप हम अवश्य समझाएंगे। पहले क्या समझाना है? पहले तो ये समझाना है 25 दोष क्या होते हैं सम्यक्तु के। जिनका सम्यक दर्शन निर्दोष होता है वही प्रतिमाओं को निर्दोष पालन कर सकता है। प्रतिमाओं में सबसे बड़ा दोष कौन है? तो मिथ्यात्व के सद्भाव में प्रतिमाएं सब द्रव्य लिंग कहलाती है। बाह्याचरण वह द्रव्य लिंग कहलाता है, उपयोगी नहीं द्रव्य लिंग, उससे कर्म निर्जरा नहीं होती। जितने कर्म आए उतने कर्म चले गए, जितने कर्म चले गए पीछे से उतने कर्म आए। तो 41 का जो भार बताया था ना, उसमें से जरा भी उतरा नहीं, अभी अभी सिर पर से ऐसा ऐसा उतार रहे थे और ऐसा ऐसा पुनः ऐड हो गया, जितने नीचे उतार रहे थे उतना ही पीछे से ऐड हो रहा, ऐसा होता है ये। तो ऐसा नहीं करना है, सम्यक दर्शन को निर्दोष निर्मल रख करके चलना है, इसके बाद प्रतिमा का पुरुषार्थ करना है। प्रतिमा सम्यक दर्शन के बिना लिए नहीं जाती। प्रतिमा को लेना है कि नहीं लेना है? कितने लोगों को लेना है? देखो देखो देखो, प्रतिमा लेना है? एक मिनट, गिनता हूं मैं कितने लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27 लोग हैं। देखो संख्या कितनी आ गई है, 27। 27 में 10 गए तो कुछ नहीं बचा। ये 27 की संख्या आ गई है काहे की, देखो ये कैसा है। 27 के 27 आ गए, यानी मतलब 10 भी व्यर्थ नहीं है, उसमें 10 शामिल हैं, तो अवश्य ये सक्सेस होगा ऐसा लगता है। शुभ लक्षण है 27, ये 27 नक्षत्र कोल्हापुर में उदित हो गए तो अवश्य बरसेगा, बरसेगा, अवश्य बरसेगा। जिनको प्रतिमाओं को धारण करना है ना, विशेष रूप से उनको बिठाकर मैं स्वरूप समझाऊंगा, वो सभी मिल करके आए और समय निश्चित करके आए, एक टाइम कब आएंगे। हाँ आज ही आना पड़ेगा जी, कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही इसका स्वरूप समझाना है। हाँ आज मार्ग प्रभावना है और मार्ग का प्रभावना हो, 27 लोग अगर प्रतिमाधारी बन गए तो कोल्हापुर में मार्ग प्रभावना हो गई, पूजन सार्थक हो गया। सम्यक दर्शन तो सबको स्वीकार करना है, किंतु प्रतिमा जिसको स्वीकार करना है वो हमारे पास उनका स्वरूप कम से कम समझने के लिए आ जाए। दोपहर को 2 बजे आ सकते हैं, टाइम है आपके पास 2 बजे का? टाइम है क्या? है। थोड़ा लेट तो फिर प्रवचन का टाइम हो जाएगा 3:30 बजे तक, कम से कम एक घंटा तो कम से कम उसको चाहिए। हाँ प्रतिमा, आप 27 लोग एक आसन कर रहे हैं कि दो आसन कर रहे हैं, क्या योगासन कर रहे हैं, क्या चल रहा है? एक आसन चल रहा है ना, तो क्लास के बाद भी समय मिल सकता है, उसके बाद दोपहर के प्रवचन के बाद 1 घंटा मिल सकता है। 5 बजे छूटता है ना, तो एकासन कर रहे हैं तो कुछ लेते नहीं होंगे, तो उस समय में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, वही समय ठीक है, 5 बजे के बाद आप 5:15 से 5:30 भी अगर शुरू करते हैं तो 6:30 तक 1 घंटा मिल जाएगा। ऐसे दो दिन समय दे दो तो पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। हाँ टाइम हो गया है। हाँ क्या बोल रहे थे, क्या पूछना?
हाँ
मिला हुआ है। मान कषाय को कैसे क्षय करना, इसके बारे में भी बताना है। इसको हम सम्यक दर्शन के 8 मदों को समझाते समय अवश्य बताएंगे। सम्यक दर्शन के ऊपर से जब हम बोलेंगे ना, आठ मदों को समझाते समय मान कषाय के कारण से मद कितने प्रकार से हो सकते हैं, आठ, आठ प्रकार से मद हो सकते हैं, उसको बताते समय अवश्य बताएंगे। समय हो गया है, हाँ।